ओम शांति। किसी जंगल में कभी एक युवा योगी था, जो कि एकांत में और मौन में कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बहुत कम समय वो आंखें खोलता था और बाह्य जगत में आता था। लंबा समय आंखें बंद करके ध्यान मग्न ही रहता था। बीच बीच में जब आंखें खोलता था तो थोड़ा भोजन करता था, स्नान करता था, परंतु अपने आप में डूबा रहता। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, उसकी तपस्या और अधिक गहन हो रही थी। उसी जंगल में एक ऋषि का आश्रम था और वहां पर एक ऋषि पुत्री थी। एक दिन उस ऋषि पुत्री ने उस योगी को देखा। योगी बहुत तेजस्वी था और उस ऋषि पुत्री को लगा कि मैं इस योगी की थोड़ी सेवा करूं, परंतु वो जानती थी कि वो सन्यासी है। इसके लिए उसने सोचा कि मैं इसकी गुप्त रूप से सेवा करूं। इस योगी को, इस तपस्वी को ये पता ना चले कि मैं इसकी सेवा कर रही हूं, या ये मुझे देख ना पाए। हो सकता है कि ये योगी यदि मुझे देख ले तो इसकी तपस्या भंग हो जाए। इसके लिए वो कन्या, वो युवती, वो स्त्री उसकी गुप्त रूप से रोज सेवा करने लगती है। उसके लिए फल लाके रखती है, उसके लिए जल लाके रखती है। उसका जो स्थान है जहां वो रहता है योगी, उस स्थान को फूलों से सजाती है, परंतु स्वयं को वो गुप्त रखती है। किसी को ये, उस योगी को ये पता ना चले कि वो कन्या उसकी सेवा कर रही है। तो इस तरह से उस तपस्वी की, उस युवा तपस्वी की यह कन्या गुप्त रीति से कई दिनों तक सेवा करती है। एक दिन अचानक ऐसे होता है कि वो उसके लिए जल रख रही होती है और थोड़ा आवाज होता है और तपस्वी अपनी आंखें खोल लेता है और वो उसे देख लेता है। और जैसे ही उस स्त्री को वो योगी देखता है, देखते ही फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जो युवा स्त्री थी वो घर जाती है, आत्मग्लानी होती है कि मेरी वजह से उसकी तपस्या शायद भंग हो गई होगी। ऐसा वो कन्या सोचती है, परंतु अंदर ही अंदर उसे थोड़ी खुशी भी होती है कि उसने मुझे देखा। एक अज्ञात सी अंदर ही अंदर खुशी भी होती है, क्योंकि शायद किसी कोने में मन के वो सोच रही होती है कि कभी तो ये मुझे देखे। परंतु आत्मग्लानी का भाव बहुत ज्यादा होता है और वो सोचती है अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। और दूसरे दिन सुबह प्रातः भोर होते ही वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तपस्वी फिर अपनी तपस्या में मगन हो जाता है। धीरे धीरे ये कहानी शास्त्रों में आई है। धीरे धीरे उसकी तपस्या और कठोर होने लगती है। पहले तो भोजन के लिए और पानी के लिए आंखें खोलता था और रुकता था, अभी उसने वो भी कम कर दिया, निराहार रहने लगा। फिर धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया और कठोर तपस्या में मगन हो गया। दिखाया है उसके शरीर पर जैसे एक पहाड़ खड़ा हो जाता है मिट्टी का, और कई वर्षों तक इसी तरह कठोर तपस्या करते रहता है। इंद्र का सिंहासन हमेशा की तरह डोलने लगता है, उसको चिंता होती है कि कहीं कोई मेरा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहा है। इंद्र प्रसन्न होकर आता है और उसको जागृत करता है और कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो किस लिए तुम इतनी कठोर इतनी घनघोर तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्वर्ग का सिंहासन देने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए। वो तपस्वी कहता है मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं। इंद्र को बहुत आश्चर्य होता है, सब तो यहाँ पर स्वर्ग की कामना करते हैं इसलिए तपस्या करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं चाहता। इंद्र कहता है फिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए, क्या तुम्हें मुक्ति चाहिए, मैं तुम्हें मुक्ति भी दिला सकता हूं। वो तपस्वी कहता है मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है कैसा ये तपस्वी है जिसकी कोई कामना नहीं है, बिना किसी कामना के तपस्या में मगन है। फिर भी इंद्र कहता है कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। वो तपस्वी कहता है वो स्त्री कहाँ है। वो तपस्वी कहता है वो स्त्री कहाँ है। तृष्णाएं और इच्छाएं और वासनाएं बहुत सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य वह साधना है, अखंड ब्रह्मचर्य वह साधना है जिसमें मन में काम का अंश भी न रहे। अखंड ब्रह्मचर्य वह साधना है जिसमें शास्त्रों में जो बताया है और बाबा ने जो बताया है पवित्रता के, बाबा ने पवित्रता के बारे में सब जगह बताया है, ब्रह्मचर्य के बारे में कम बताया है, परंतु पवित्रता का जो भवन है उसका आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य है। यदि ब्रह्मचर्य को हटा दिया जाए तो पवित्रता संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है काम विकार की का संपूर्ण उन्मूलन, काम विकार से संपूर्ण मुक्ति, काम और काम के जो भी अंश है उनसे मुक्ति अर्थात ब्रह्मचर्य। तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की बहुत चर्चा की है जिसकी हम कल नीचे क्लास में चर्चा करेंगे, परंतु आज कुमार और कुमारी आप सब जो यहां बैठे हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, यदि इसको जीत लिया तो सब जीत लिया, यदि इसको नहीं जीता तो कुछ भी नहीं जीता, इतना ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, वो कौन सी बातें हैं, अगर हो जाए तो जिन्हें ब्रह्मचर्य का खंडन कहा जाता है उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लिखा है 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य, जो योगी 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी काम की ऊर्जा ओजस में परिणीत हो जाती है, काम की जो ऊर्जा है ओजस शक्ति का रूप धारण करती है, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में मैंने आधा पृथ्वी घूम लिया, परंतु 20 लोगों से अधिक अखंड ब्रह्मचारी नहीं देखे सारी पृथ्वी पर उस समय, केवल 20, उससे भी कम। तो जहां ब्रह्मचर्य का तेज होता है वहां पर व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। जहां ब्रह्मचर्य का तेज होता है वहां पर व्यक्ति की वाणी में एक दिव्य प्रवाह होता है, एक दिव्य प्रभाव होता है। वही शब्द यदि कोई दूसरा कहे तो उन शब्दों में इतना असर नहीं होगा, परंतु एक योगी के मुख से जब शब्द निकलते हैं, एक एक शब्द तीर की तरह होता है, ओजस। शास्त्रों ने उसे ओजस शक्ति कहा है। काम की ऊर्जा ओजस में परिणीत हो जाती है, मेधावी व्यक्ति बन जाता है, स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, एक दिव्य आकर्षण होता है व्यक्तित्व में। और ऐसी योग की पावर उसमें आ जाती है कि संकल्प से ही बहुत सारी चीजें वो कर सकता है, केवल संकल्प से। संकल्प किया ये हो जाए तो वो होगा, इतनी पावर उसके संकल्पों में आ जाती है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की परिभाषा। ब्रह्मचर्य, चर्या अर्थात दिनचर्या, रात्रिचर्या, ब्रह्मचर्या, चर्या अर्थात रूटीन, चर्या अर्थात क्रियाकलाप, चर्या अर्थात सारे दिन भर में क्या किया जाता है। जैसे दिनचर्या, वैसे वह चर्या, वह रूटीन, वह आचरण जो जिसमें हम ब्रह्म में स्थित हो जाए, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। हमारे ज्ञान के अनुसार जगदीश भाई ने लिखा है, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म ही स्थिति में स्थित हो जाना, अर्थात परम धाम में स्थित हो जाना। जब आत्मा अपने संपूर्ण मूल रूप में परम धाम में स्थित होती है तब उसे ब्रह्मचर्य में स्थित ऐसा कहा जाता है। एक दूसरी, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य। ब्रह्मा ने जो चर्या की उसी चर्या का फॉलो करना, को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मचर्या, अर्थात ब्रह्मचर्य। तीसरा, ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता। यहां पर एक वाक्य है कि ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। पहला है कि ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की बहुत व्यापक परिभाषा है। इसके लिए खाली ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को जीत लेना, संसार में भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं जिन्होंने काम विकार को जीता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र है। दूसरा, संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य, एक तो पवित्रता है परंतु ब्रह्मा की चर्या में पवित्रता तो एक भाग है, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो दोनों ही बातें हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात ये परिभाषा है। ब्रह्मचर्य में कौन सी बातें अगर हो तो ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। लिखा है 8 बातें हैं। इन 8 बातों में से एक बात का भी यदि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर खंडन होता है तो वह ब्रह्मचर्य नहीं। टाइम, प्लेस, सिचुएशन। ब्रह्मचर्य अर्थात ये 8 बातें जिनको ब्रह्मचर्य की गांठें कहा जाता है, इनमें से एक भी बात का खंडन कहीं पर भी ना हो, किसी भी समय में ना हो, किसी भी परिस्थिति में ना हो, यदि होता है तो वो ब्रह्मचारी नहीं। हमने कहा 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य की साधना है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस गिनाई हैं। स्टेज पहली एक मास ब्रह्मचर्य, जिसमें मन बिल्कुल विरोध करता है। जब कोई साधक पहली बार ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आकर्षण और तीव्र हो जाता है काम का। फर्स्ट स्टेप 1 मंथ बताया है, सेकंड स्टेप 3 मंथ्स, 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। थर्ड स्टेप 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। फोर्थ स्टेप 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर 3 वर्ष, फिर 6 वर्ष और फिर 12 वर्ष। धीरे धीरे हमारे शरीरों में चक्र है। बाबा ने कहीं चक्रों की चर्चा नहीं की है। वास्तव में ऐसे कोई स्थूल चक्र नहीं है, ये अवस्थाएं हैं चेतना की। मूलाधार चक्र सबसे नीचे, कई लोग उसी चक्र के तल पर जीते हैं। वो चक्र अर्थात काम, थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे नाभि में मणिपुर चक्र बताया है। ये 3 चक्रों के तल जो है, पहला तो काम, एक भोजन, एक जो चक्र है मणिपुर, सत्ता। व्यक्ति को काम में इतना रस नहीं है, परंतु सत्ता में रस है। परंतु ये जो 3 तल है चेतना के लोअर लेवल से, कई लोग केवल काम के तल पर जीते हैं बस, कई लोग भोजन के तल पर जीते हैं बस, कई लोग सत्ता के तल पर जीते हैं। सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, परंतु यही 3ों में नीचे ऊपर घूमते रहते हैं। 3ों ही चाहिए, फिर काम की भी तृप्ति चाहिए तो वैसा ही भोजन भी चाहिए और वैसी ही पावर भी चाहिए, डोमिनेट करना दूसरों को। पुरुष है तो स्त्री को डोमिनेट करेगा, या तो लोगों को डोमिनेट करेगा, अपने वश में करने का प्रयत्न करेगा। इन 3ों चक्रों के तल पर आत्माएं अधिकांश जी रही है, उसके ऊपर उठती ही नहीं है। या तो भोजन की ही चिंता है, दिन रात उसी की चिंता, क्या खाऊं क्या खाऊं। जब धीरे धीरे चेतना उससे ऊपर उठती है, यहां है अनहत चक्र, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं हृदय में। यहां पर व्यक्ति के हृदय में समाज सेवा, जन कल्याण की भावनाएं जागृत होती है। थोड़ी थोड़ी सोचता है सबके लिए कुछ करूं, वो नीचे के 3ों तलों से ऊपर उठा है। उसके भी ऊपर विशुद्ध चक्र गले में, विशुद्ध चक्र के तल पर जो लोग जीते हैं, वो उस समाज सेवा से भी थोड़ा बढ़कर अब स्वयं को जानना चाहते हैं। ये चक्र है अध्यात्म का चक्र, विशुद्ध चक्र। और अध्यात्म में भी व्यक्ति जब उन्नति करता है तब कुछ और हो जाता है। यहां 3रा नेत्र जिसको कहा है आज्ञा चक्र, वो खुलने लगता है। आज्ञा चक्र खुलना अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य चालू। और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, फाइनल स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, संबोधि जिसको कहा है, संपूर्ण ज्ञान। जैन ने जिसे केवल ज्ञान कहा है, बुद्धिज्म ने जिसे, जो महात्मा बुद्ध को गया वृक्ष के नीचे, गया में उस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई संबोधि, हिंदू धर्म ने उसे मोक्ष या जीवन मुक्ति कहा है, चीन में ज़ेन है, ज़ेन उसे किन्शो कहते हैं, किन्शो की भी जो अनुभूति है उसे सैटोरी कहते हैं, सैटोरी का अनुभव। अलग अलग क्रिश्चियनिटी ने जिसे फ्यूशन, बी एटीट्यूड, लिबरेशन, कन्वर्शन, अलग अलग शब्द कहे हैं। यहां रहते ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। जैसे हम उससे बाहर आ गए। देह में है पर देह से बाहर है, ऐसी अवस्थाएं है कुछ, तो वो कौन सी आठ बातें हैं? यदि वो हो जाए किसी भी स्थान में, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, तो ब्रह्मचर्य का वो खंडन है। सबसे पहला, दर्शनम, देखना। संसार भर में बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग हैं, अनेक अनेक भिन्न भिन्न आश्रम मठों में रहते हैं, स्त्री है, पुरुष है, क्रिश्चियन नंस है, तुरंत ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं बिना सोचे समझे, पता नहीं है क्या वो, पर कर लिया, और फिर उनके अंदर बहुत सारी चीजें दबी रह जाती है, दमित काम वासनाएं, सप्रेशन हो जाता है वहां पर, और बार बार फिर ऐसी आत्माएं अपने काम की जो तृप्ति है एक दूसरे को देख कर करती है। दैहिक दृष्टि, जिसको कहा है दर्शनम। सन्यासी के लिए कहा है, भाई और बहन दोनों के लिए, यदि कोई सन्यासी चल रहा है और उसे कोई स्त्री दिखाई दे, एक बार देख लेना सहज है, नेचुरल है, परंतु दूसरी बार मुड़कर उसी स्त्री को देखना इच्छा है, तीसरी बार मुड़कर उसी स्त्री को देखना वासना। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी भक्तों के लिए या श्रेष्ठ सन्यासियों के लिए यह भी कहा गया है, यदि कोई स्त्री अनन्य परमात्म प्रेम में विभोर है, जमीन पर रो रही है, तो भी उसे ना देखे, क्योंकि काम विकार का भरोसा नहीं, कहीं पर भी आ सकता है। हाथ बांधने वाले, राखी बांधने वाला जो हाथ है उसको पकड़ सकता है। पहला, दर्शनम, देखना। क्या देखना है, क्या है इस देह में? मूवीज, नॉवेल्स, उपन्यासकार, मीडिया, इन सब ने एक भ्रामक चित्र प्रस्तुत किया है देह का, देह के प्रदर्शन का, जैसे उसमें बहुत कुछ अच्छा है। उपनिषद में कहानी है राजा हेमचूर की, युवा वन में शिकार करने जाता है, रास्ता भटक जाता है, किसी देश, दूसरे देश में प्रवेश करता है, वहां के राजा स्वागत करते हैं, वहां रहता है। राजा की जो पुत्री होती है अति रूपवती, उसको देखता ही उसको लगता है कि मुझे इससे विवाह करना है, और उसको कहता है राजकुमारी को कि मुझे तुमसे विवाह करना है, परंतु वो राजकुमारी ब्रह्मज्ञानी होती है। वो कहती है मैं तुमसे विवाह करूंगी परंतु आज नहीं, 10 दिन के बाद, तुम 10 दिन के बाद आ जाना मुझे लेने। और वो राजा बहुत खुशी खुशी चला जाता है, राजकुमार सोचने लगता है अपने विवाह के बारे में, मेरा विवाह होगा, ये होगा, वो होगा। उस 10 दिनों में वह राजकुमारी ऐसी जड़ी बूटियां खाती है जिससे दस्त हो जाती है, डायरिया इतना खाती है कि दिन में 10-15 बार उसको दस्त होती है, और वो ऐसी हो जाती है हड्डी 10 दिनों में, उसका पूरा शरीर सूख जाता है, और वो भी जो भी उसका दस्त होता है वो स्टूल सैंपल वो अच्छे पॉलिथीन में लगा के रखती है बाजू के कमरे में। राजा बहुत खुशी खुशी से आता है, राजकुमार 10 दिन के बाद विवाह करने के लिए, दासी से पूछता है राजकुमारी कहाँ है, दासी कहती है वो खटिया पर लेटी हुई है। उसको देखकर उसे शॉक होता है, ये कौन है, हड्डियों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो उसको पूछता है आप क्या वही रानी राजकुमारी हो, वो कहती है मैं ही वही राजकुमारी हूं। तो वो कहता आप ऐसे कैसे हो गई हो, वो तो मैं ऐसी ही हूं, और रही बात मेरे सौंदर्य की तो बाहर बाजू के कमरे में उसको टंगा के रखा है, जाकर देख लो। वो जाकर देखता है चेतना जागती है, उसके चरणों में गिरता है, वो उसे उपदेश करती है। दिखाया है बाद में उसे ऐसा वैराग आता है कि संसार को छोड़कर, राज्य को छोड़कर सीधा संन्यास दे लेता है। कहां मैं आकर्षित हो रहा हूं? इस देह में हड्डी मांस मज्जा मल और मूत्र से भरा यह देह, इसी का इतना प्रदर्शन, इसी पर आधारित सारी मूवीज है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सारा हॉलीवुड बॉलीवुड वर्ल्ड इसी देह पर है, देह का प्रदर्शन। क्या देखना है? एक बहुत वरिष्ठ भाई थे मधुबन में, अब भी है। एक बार बहुत सादे, बहुत सिंपल भाई है, बहुत सिंपल, एकदम नम्रचित और संपूर्ण ब्रह्मचर्य, मतलब अपवित्र दृष्टि का तो कोई सवाल ही नहीं, इतनी शुद्ध। एक बार बहुत समय दीदी के समय, मनमोहिनी दीदी के समय मधुबन में बहने आई थी, तो दीदी को उन्होंने ऐसे ही सहज पूछ लिया, दीदी ये बहन कहां से आई है? एक दूसरी बहन जो जा रही थी वहां से, दीदी ने कहा, क्यों शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो। देखना देखना है तो केवल मस्तक मणि को देखो, और देखना है तो देह के वास्तविक स्वरूप को देखो। तुलसीदास की कहानी है, अपनी पत्नी से इतना 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 मोह था कि जब वो छोड़ के गई रत्नावली, कैसा पागल हो गया, वासना इतनी तीव्र हो गई कि रोक नहीं पाया, आधी रात को इतनी तूफान में भी चला गया। वो मुर्दा था, उसके ऊपर बैठकर नदी को पार किया, वो सांप था, उसके ऊपर पकड़कर चढ़ा, और उसकी पत्नी ने उसको जो कहा कि जितना प्रेम तुम्हें इस नश्वर देह से है, यदि इतना ही प्रेम तुम्हें राम से होता तो तुम्हारी जीवन नैया तर जाती। और तब उसे वैराग आता है, तब वो देखता है उसकी पत्नी का देह, वो देह नहीं दिखता है उसे, हड्डी मांस का वो पंजर, वो कंकाल उसे नजर आता है, उसको देखता है और तुरंत उसे वैराग आता है, जागरण होता है। यहां पर देखना, यदि देह को देख रहे हैं, यदि देह को देखकर उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, यदि देह को देखकर मन में काम का भाव जाग रहा है, किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। ये परिभाषा है ब्रह्मचर्य की। तो पहला है देखना, देखना है तो बाबा ने क्या कहा, एक तो आत्मा देखो, दूसरा भाई बहन देखो। भाई बहन के संबंध में भी बाबा ने कहा है विकार आ सकता है, किसी को अगर हम बहन बना दे, विशेष बहन, स्पेशल बहन, इसके लिए किसी को विशेष बहन बनाने का भी संकल्प नहीं करना और किसी को विशेष भाई बनाने का भी संकल्प नहीं करना। भाई ही रहने दो, विशेष भाई नहीं बनाना। बहन ही रहने दो, विशेष बहन नहीं बनाना। विशेष बहन, विशेष सौगात, विशेष भाई, विशेष राखी। आवश्यकता नहीं है, विशेष स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, नाम सेवा, ऊपर से नाम सेवा। खबरदार, आवश्यकता नहीं है। All spiritual friendship, more often than not, turn into sexual friendship. किस भाव से देखा जा रहा है? देखना। दूसरा, स्पर्शनम, स्पर्श करना, हाथ लगाना, हाथ लगाने की इच्छा करना। ब्रह्मचर्य का खंडन है। काम की ऊर्जा दो जगह से बहुत तीव्रता से बहती है, आंखें और हाथ, आंखें और हाथ। इसलिए भारत में प्रथा है नमस्कार करने की, हाथ नहीं मिलाते, विदेश में हैंडशेक करते, ऊर्जा जाती है। बहुत सारी पता नहीं कौन से विचारों की वो आत्मा है, दूर से नमस्कार आवश्यकता नहीं है। अपोजिट पोल्स शरीर में हार्मोन ऐसे हैं, उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, हार्मोन्स हाईजैक द इंटेलिजेंस, हाईजैक कर लेते हैं इंटेलिजेंस, विवेक को, बुद्धि को, ऐसे कहते हैं संसार में। इसके लिए हमारा जो स्पर्श हो वैसा ही स्पर्श हो जैसे माँ का एक बच्चे के प्रति स्पर्श होता है, वैसा ही स्पर्श हो जैसे एक डॉक्टर होता है और मरीज को किस भाव से देखता है, कोई उसमें अपवित्रता नहीं होती है। वैसा अगर स्पर्श हो भी जाए इधर का इधर और इधर का इधर, उसमें उत्तेजना ना हो, उसमें वासनाएं ना हो। यदि मन में है तो हाथों में होगा, हाथ में ऐसा कुछ है नहीं, मन में, मन की बात है, भाव की बात है। तीसरा, स्तुति, अत्यधिक प्रशंसा करना किसी एक बहन की या किसी एक भाई की, ये भाई बहुत अच्छा है, अच्छा ही रहने दो, दूर से उसमें ये विशेषता है, रहने दो, दी किसने। दादी जान की हमेशा अपना अनुभव सुनाती है, एक बार दादी बहुत एक भाई का कोर्स कराया और बहुत खुश हो गई, ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची 60s में, बाबा को कहा कि बाबा ये भाई का मैंने कोर्स कराया है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये भाई एकदम निश्चय बुद्धि है, इस भाई को तो एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा तीर उसको लगा या तुमको? तीर उसको लगाए या तुमको लगाए, किसको लगाए? स्तुति, सब समान है, यदि किसी में विशेषता है, किसी में कोई गुण है तो किसकी देन है? दाता की देन है, उसके गुण की तरफ आकर्षित होने जाना, सब उसने दिया है और हर एक में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ है। स्तुति, प्रेज, एक उसमें भी दो प्रकार, एक मन ही मन अपने अंदर उसकी स्तुति करना जिससे मोह है, प्रेम है, आसक्ति है, लगाव है, मन ही मन उसके गुणगान गाना, वो कितनी अच्छी है, वो भाई कितना अच्छा है। मुरलियों में आता है बाबा, मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, हम बाद में करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा ये भाई नहीं, मुरलियों में आता है बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी मुरली सुनाती है, बाबा का क्या उत्तर है? मुरलियों के वाक्य है ये, अरे मीठी मुरली है बहन नहीं। बहन में ही फंस जाए, वो बहन नहीं दिखाई दी तो सोच रहे कहां गई, मुरली में मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, वो आ जाए अब ठीक लग रहा है, थोड़ा चैन आ गई जैसे। आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट कही, उस दिन आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुना, बाबा ने कहने के लिए स्तुति। चौथा, केली, संस्कृत शब्द है केली, केली अर्थात साथ साथ खेलना, टू प्ले टुगेदर, साथ साथ खेलना, साथ साथ घूमना, साथ साथ बैठना, नाम सेवा, ऊपर से नाम सेवा, प्रोटेक्शन ताकि कोई कुछ कहे ना, किसी भी स्थान पर युधिष्ठिर से पूछा गया है, जब तुम्हारी मां कुंती तुम्हारे साथ होती है, क्या तुम्हारा मन संपूर्ण निर्विकारी है? वो कहता है, आई एम नॉट श्योर। धर्मराज धर्म युधिष्ठिर को दिखाया है, धर्मराज है, धर्म का पालन करने वाला है। बाकी लोग इतना नहीं करते, वो चार पांडव, वो तो क्रोध आता है किसको, कोई सोचता है उसको मार दू, उसका जंगा फाड़ दू, ये कर दू, वो कर दू। युधिष्ठिर ये नहीं सोचता है, वो धर्मराज है, धर्म के पथ पर चलने वाला है। वो कह रहा है, आई एम नॉट श्योर। एक और भी खेल है, एक तो स्थूल खेल खेलना, प्ले गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, कैरम और क्या क्या होता है वो सारे। एक दूसरा भी खेल है, व्हाट्सएप का खेल, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से भेजा, अभी तक आया नहीं, आजा आजा आजा, कब आएगा, हाँ कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कभी उधर से मैसेज, कभी इधर से मैसेज, कभी इधर से नाराजगी, उधर से नाराजगी, रूठना रोसना, इधर से फिर मनाना, उधर से मनाना, इधर से एक फोटो भेजना और देखना अभी तक आया नहीं, कब आएगा, ऐसे बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी सतगुरुवार, हैप्पी अमृत वेला, क्या आवश्यकता है इसकी। आदत पड़ गई है लोगों को। वेरी पावरफुल क्लास फॉरवर्ड, सुना क्या तुमने? नहीं सुना। फॉरवर्ड, जिसको फॉरवर्ड किया वो सोचता है बहुत पावरफुल क्लास फॉरवर्ड। जिसके पास पहुंची उधर तीसरे के पास, वो सोचता है इस सेंटर का कल्याण होना चाहिए। फॉरवर्ड वो क्लास बिचारी अनाहत घूमती रहती है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, एक ईमेल से दूसरे ईमेल, कोई सुनने वाला ही नहीं है, जो भी देखता है पावरफुल क्लास और भेजो आगे, अपना कल्याण बाद में। दादी जानकी की क्लास हुई, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत पावरफुल क्लास थी, क्यों नहीं आए तुम, आना चाहिए था तुमको। अच्छा क्या था क्लास में, अब वो मत पूछो बस क्या था। मुरली बहुत अच्छी थी, एकदम पावरफुल, बहन जी ने इतनी अच्छी मुरली सुनाई, अरे था क्या, डोंट आस्क, वो नहीं पूछना, बस तुमको आना चाहिए था, पहले तो आते नहीं और फिर पूछते हो क्या था। गेम्स, रूठना रूसना, ये इसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, वो उसको मनाएगा, संबंध में घनिष्ठता, संबंध में रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारी। रोमांस की वो दुनिया संसार की है, हमारी नहीं। हमारे वही संबंध है जो लक्ष्मी के और नारायण के साथ है, और नारायण के लक्ष्मी के साथ। किसी को अपना साथी, दोस्त, फ्रेंड, फ्रेंड एक वो है, साथी एक वो है, दूल्हा वो है, साजन वो है, पति वो है, उसके अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं बनाना। ही इज द ओनली ब्राइडग्रूम। यदि बनाओगे धोखा होगा। रोकना है स्वयं के मन को और भावना को। संसार का वातावरण विकारी है, सारे सीरियल, सारे मूवी, सब उसमें वही भरा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। सार क्या है तो कुछ भी नहीं। जाओ उनके चरित्र को जाकर देखो, वो एक्टर और एक्ट्रेसेस के क्या है अंदर, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। जो दिखा रहे हैं बाहर और जो पार्टियों में दिखा रहे, वो उनका चरित्र नहीं है। किस तल पर वो जी रहे हैं। कोई कहते हैं हम लोग धार्मिक सीरियल बहुत देखते हैं, धार्मिक सीरियल, धार्मिक मूवीज, पर जो एक्टर काम कर रहा है उनका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है? जो एक्टर काम कर रहे हैं उसमें जो राम बना है और जो सीता बनी है, क्या उसका चरित्र है आध्यात्मिक? किस भाव से वो काम कर रहे हैं उस सीरियल में? क्या विश्व कल्याण के भाव से काम कर रहे हैं? फिर किस भाव से काम कर रहे हैं? अभी अभी श्री राम दूसरे दिन किसी पार्टी में, एक गांव की एक बहन एक श्री कृष्ण का सीरियल देखते देखते वो श्री कृष्ण के प्यार में इतनी ये हो गई, इतनी उसके पीछे पागल हो गई कि बस वही चाहिए, सब कुछ छोड़कर मुंबई चली गई उससे मिलने। देखा तो वो डांस पार्टी में डांस कर रहा है किसी के साथ। ये था श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। पांचवा गुह्य भाष्य। गुह्य भाष्य अर्थात प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट टॉक्स, एकांत में बात करना लंबा लंबा समय तक फोन पर या वास्तव में बैठकर, गुप्त बातें किसी को पता ना चले, स्वीट नथिंग्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रोमांटिक टॉक्स या फिर प्राइवेट टॉक्स, सीक्रेट टॉक्स, कोई इस अंधेरे में, इस कोने में, कोई उस कोने में। 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, 3 मिनट्स बस। हाँ ना सेवा के ही बातें बस। अगर उसको बढ़ाया तो फिर एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, और उसमें नीचे ऊपर मिस करना, आई मिस यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मुझे पता रहना चाहिए तुम्हें कहाँ हो, बताया क्यों नहीं मुझे कहाँ गए। मिस किसी पुरुष या किसी स्त्री को नहीं करना है, बाबा को करना है। गुह्य भाष्य, बैठकर बातें करना लंबा समय तक एकांत में, सुनसान जगह पर, आइसोलेटेड प्लेसेस पे। अगर हो रहा है तो ब्रह्मचर्य का खंडन है। छठवीं पॉइंट, सिक्स्थ, संकल्प। काम विकार के संकल्प करना, काम विकार की कल्पनाएं, सेक्सुअल फैंटेसीज, टीवी पर जो देखा वही करने की इच्छा होना, इसके लिए आंखें क्या देख रही है, यह बहुत आवश्यक है। कोई कहते हैं हमने तो बस ऐसे ही 5 मिनट देख लिए, परंतु जो दिखाया है वो 3D है। एक किताब यदि किसी को कहो कि ये किताब तुमने 10 वर्ष पहले पढ़ी थी, क्या है इस किताब में, उसको बिल्कुल याद नहीं। उसको कहो कि ये मूवी, ये सीरियल, ये तुमने 10 वर्ष देखा था, पहले देखा था, उसको डायलॉग भी याद है। क्यों? 3D है वो किताब, 2D है, उसमें आवाज भी सुनाई दे रहा है, वो चलते फिरते चित्र है, उसका इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा है। कोई कहता है ये धार्मिक सीरियल है, पर 1 मिनट उस 1 घंटे के सीरियल में वो देखा जो नहीं देखना चाहिए, वो 59 मिनट्स जो देखा वो भूल जाएगा, और जो 1 मिनट देखा वही याद करेगी आत्मा। स्कूल, कॉलेज, इन सब के सबसे गुजर कर आत्मा फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी जब बनती है, सब कुछ देखा है, और फिर अचानक मुरली में आता है, काम महाशत्रु है तुम्हें, कम आदि मध्यंत दुख देता है, रोज आता है, सुना इधर से गया, इतना कॉमन बन गया, उसका कोई असर होना बंद हो गया है। उसका कोई विस्तार नहीं, उसकी कोई चिंतन नहीं, क्या है वो उसको समझ नहीं, और फिर ऐसे ब्रह्मा कुमार और ऐसे ब्रह्मा कुमारियों को हमने गिरते हुए देखा है। एक आत्मा हमारे पास आई थी ओपीडी में, इतनी मोटी फाइल थी उसकी, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कोई ठीक नहीं कर रहा था, क्या बीमारी है समझ नहीं आ रहा था। एक डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस लिखा था सप्रेस सेक्सुअल डिजायर्स, सप्रेस अर्थात दमन की हुई, दमित, यही बीमारी है। और डॉक्टर्स कहते हैं बाहर के क्यों बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये इतनी सारी बीमारियां उसके वजह से हो रही है। संसार में जितने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से अधिकांश लोग जो बने हैं केवल दमन के वजह से, क्योंकि समझा नहीं, उदात्तीकरण नहीं किया इस ऊर्जा का, केवल सप्रेस कर दिया। विदेश में एक सन्यासियों का ग्रुप था फ्लैगिस्ट, एक चाबुक रखते थे हाथ में, जैसे ही काम विकार का संकल्प आया स्वयं को मारते थे, लहू लुहान कर देते थे स्वयं को। ये किस लिए? क्योंकि काम का विचार आया इसलिए स्वयं को सजा। परंतु धीरे धीरे इसका परिणाम ही कुछ और होने लगा, वो जितना मारते थे मारते थे मारते थे, और फिर धीरे धीरे ज्यादा मारने के बाद और तीव्रता से इच्छा उत्पन्न होने लगी, उल्टा होने लगा। समझा नहीं ऊर्जा को, ये एक ही स्टडी है जो करनी है हर ब्रह्मचारी को, क्या है ये ऊर्जा का स्वभाव है नीचे और बाहर बहने का, नीचे और बाहर। ऊर्ध्वरेता योगी अर्थात ऊर्जा ऊपर बहने लगे, ऊर्ध्वगामी हो जाए, ऊपर बहने लगे यह ऊर्जा। एक माली है जिसके पास एक बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल है, एक मास के बाद सारे फूल तोड़ता है। कुमार सभी ध्यान से सुनना है इस बात को, बहुत ज्यादा ध्यान से। वो माली एक मास के बाद सारे फूलों को तोड़ता है, उसका एक रस बनाता है पराग, और फिर जाकर एक नाली में बहा देता है। क्या यह बुद्धिमान माली है? देह में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, विकार का संकल्प यहां और ऊर्जा बाहर, विकारी स्वप्न और स्वप्न दोष, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस ऊर्जा को संरक्षण करना अर्थात ब्रह्मचर्य। संकल्प, कल्पना, फैंटेसी, क्या हम संकल्प कर रहे हैं और क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं? आंखें बंद करके व्यक्ति क्या सोचता है? मन ही मन। हमें फोन आते हैं कुमारों के, सेंटर पर हम रहते हैं परंतु बहन के प्रति विकार की भावना है, क्या करें? साथ में सेवा करते हैं, सम्मान बहुत है, परंतु देखते ही उत्तेजना होती है, क्यों? इस एनर्जी को कन्वर्ट नहीं किया है अब तक। एक कठोर साधना की आवश्यकता है, उसके सिवा ब्रह्मचर्य नहीं होगा। क्या हम सोच रहे? कल्पना, विजुअलाइजेशन, इसलिए योग के नए नए प्रयोग करने हैं ताकि योग की कल्पनाएं करें हम बाबा के साथ, और ये जो विकारी कल्पना मन में उत्पन्न होती है स्वतः ही विलीन हो जाए, स्वतः ही समाप्त हो जाए, अंश भी ना रहे इनका। सेवेंथ अध्यावसाय, अध्यावसाय संस्कृत शब्द है अर्थात नजदीक जाना, स्त्री का पुरुष के और पुरुष के स्त्री का। बाबा ने कहा है मुरलियों में बहुत बार कि स्त्री ज्ञान में नहीं चलती है, पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, पति ज्ञान में चलता है। यह एक परिस्थिति है, सबसे निचली परिस्थिति हम कहेंगे कि जिसमें पत्नी ज्ञान में है और पति नहीं है। पत्नी क्योंकि बहुत शक्तिशाली होती है तो ये ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी एक अवस्था है कि जिसमें पुरुष ज्ञान में है, स्त्री ज्ञान में नहीं है। यह थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। पुरुष है ज्ञान में, परंतु स्त्री में पावर होता है, वो उसको खींच सकती है नीचे। यह दूसरी अवस्था है। तीसरी भी अवस्था है युगलों की, जिसमें दोनों ही ज्ञान में है और दोनों को ही काम का आकर्षण है। यह भी एक अवस्था है। समीप जाना आवश्यकता नहीं है। जब तक काम नहीं है, दूर रहे तो बहुत अच्छा। समीप जाना, समीप बैठना। हमारे ओपीडी में जैन साध्वी आती है दिखाने के लिए, बुजुर्ग साध्वी है, फिर भी वहां नहीं बैठती हो। जिस स्थान पर 45 मिनट्स तक कोई पुरुष बैठा है, वहां नहीं बैठती हो, खड़ी रहती है। कहती है खड़े खड़े बताओ जो करना है, वहां बैठेंगी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन है वहां पर, खड़ी रहती है। कब तक रहते उनके धर्म के हिसाब से 45 मिनट्स बोला है, परंतु बाबा ने ये सब बातें नहीं कही है, परंतु इनका असर तो है, दिखाया है रामकृष्ण परमहंस के जीवन में। उनसे मिलने बहुत सारे भक्त आते थे, और सारे भक्त संसार के भक्त थे, विकारी भक्त थे। कोई आकर बैठता था तो वो जाने के बाद फावड़ा लेकर उस जमीन को खोदते थे और जमीन फेंकते थे, वाइब्रेशंस खराब है वहां के। कोई भक्त प्रसाद लेकर आते थे, खुद नहीं खाते थे, नरेंद्र को बुलाते थे, उसको खिलाते थे, उसमें बहुत पावर थी सब पचाने की, उसको खिला देते थे, वो खुद नहीं खाते थे। गुजरात में एक डाकू हुआ था कभी, जोगीदास खुमान एक बार आधी रात को रेस्ट कर रहा था आराम, तो अचानक छन 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 घुंघरू की आवाज आई। देखा कौन, तो एक युवा स्त्री। उसने कहा क्या चाहिए तुमको, बंदूक लेकर खड़ा हो गया क्योंकि डाकू था। उसने कहा बंदूक उधर रखो, मैं तो तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी वीरता से इतनी प्रभावित हूं, इसके लिए तुमसे मिलने आई हूं आधी रात को, तुम मुझसे विवाह कर लो, मुझे तुम्हारे जैसा पति चाहिए। वो कहता है खबरदार उधर हो जाओ, क्योंकि डाकुओं में ब्रह्मचर्य बहुत ज्यादा होता है। उस समय के जो डाकू थे उनको पता था किसी से संबंध जोड़ना अर्थात नीचे गए, इसके लिए किसी स्त्री को आसपास नहीं रखते थे। वो कहता है कि तुम मेरे लिए बहन के समान हो और यहां से चले जाओ, हमारी परंपरा में ही नहीं है ये, यहां से चली जाओ। और उसको वो भेज देते। उसके बाद दिखाया है जब भी वो सोता है दो अंगरक्षक को रखता है, किस लिए, किसी दूसरे डाकू से या पुलिस से रक्षा करने के लिए नहीं। और उसी के जीवन में दिखाया एक बार सुबह सुबह जा रहा है घोड़े पर 4 बजे, खेतों में एक युवा स्त्री खेत में कुछ काम कर रही है, तो वो वहां रुकता है और उसको कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता अकेले इस खेत में काम करते हुए। वो कहती है जब तक हमारा भ्राता जोगीदास खुमान है हमें डर कैसा, जहां वो है डाकू इस गांव की मां और बेटियां सुरक्षित है। तो वो एक डाकू जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है धर्म भ्राता बन जाता है सारे गांव की मां और बहनों का। हम कौन है, तपस्वी है, ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। एक डाकू अगर पालन करता है तो इतना ऊंचा उसकी नजर से सारी बहनें उसको देखती है, सुरक्षित महसूस करती है सारी बहनें। वो अगर रहता है केवल उसका नाम कि ये डाकू जोगीदास खुमान का इलाका है, कुछ नहीं होगा हमको, ऐसा उसका ब्रह्मचर्य था। समीप जाना, लास्ट 8वां क्रिया, क्रिया एक्ट, जिसको बाबा कहते हैं काम विकार कटारी है, काम कटारी नहीं चलाओ। वास्तविक क्रिया, यदि कोई काम विकार में जाता है और सुबह आकर यहां बैठता है, यह इंद्र सभा है, यदि कोई काम विकार में जाता है तो एक साल के लिए मुंह मत दिखाओ, साकार महावाक्य है बाबा के। यदि कोई विकार में जाता है तो एक साल के लिए आउट। तो ऐसे ये आठ गाठे हैं ब्रह्मचर्य की, इनमें से एक भी यदि खंडन होती है तो वह ब्रह्मचर्य नहीं, और इसका पालन अखंड रूप से यदि कोई करे तो उसमें अपूर्व ऊर्जा प्रकट होने लगती है, विकारों का आकर्षण समाप्त होने लगता है। इसके लिए ये जो आठ बातें बताई, फिर से रिवाइज करते हैं, फिर नीचे क्लास होगा। पहला दर्शन, दूसरा स्पर्श, तीसरा स्तुति, चौथा के लिए अर्थात खेलना, पांचवा गुह्य भाष्य, छठवा संकल्प करना या कल्पना करना, सातवा अध्यावसाय अर्थात निकट समीप जाने का संकल्प करना, दोस्ती बढ़ाने का संकल्प करना, फ्रेंडशिप बढ़ाने का संकल्प करना, और लास्ट क्रिया। एक लास्ट बात कहूंगा फिर इस क्लास को हम पूरा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है शशीर कविता बंगाली में, और लास्ट पोएम उसमें दिखाया है एक युवा स्त्री है और एक युवा पुरुष है। स्त्री जो है बहुत अमीर है, रईस है, और पुरुष थोड़ा गरीब है। उन दोनों का आपस में बहुत प्यार है और दोनों को शादी करनी है। पुरुष कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, वो भी कहती है हाँ मैं तुम्ही से शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त ऐसी है कि जब हम शादी करेंगे साथ में नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगी, महल उधर, तुम उस महल में रहोगे, मैं इस महल में रहूंगी, बीच में एक झील होगी। वो कहता है ये कैसी शादी है जिसमें हम शादी नहीं रहेंगे। वो कहते हैं शादी करूंगी तो मैं ऐसी ही करूंगी, क्योंकि कभी हम मिल गए तो मिल लिए, कभी तुम उधर से नौका विहार कर रहे मैं इधर से नौका विहार कर रही, मिल लिए तो मिल लिए, हाय बाय गुड बाय ओम शांति जो भी, तुम उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रही हूं, मिल लिए तो मिल लिए बस। वो कहता ऐसा क्यों? पर तो वो कैसी है, जब भी दो व्यक्ति ज्यादा समीप आने लगते हैं तो फिर अवगुण दिखाई देने लगते हैं। दोनों के बीच में जो शुद्ध प्रेम है वो विकार में परिणित हो सकता है, दोनों के बीच में जो सम्मान है एक दूसरे के प्रति वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घनिष्ठता से घृणा भी उत्पन्न होती है। इसके लिए मैं चाहती हूं कि हमारा जो प्रेम है अमर रहे, हमारा जो प्रेम है वो हमेशा फ्रेश रहे। इसके लिए हम शादी तो करेंगे, हाँ यदि तुम शादी नहीं करना चाहते तो किसी और से कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हें से शादी करूंगा और तुम्हारी याद में सारा जीवन बिता दूंगी। परंतु शादी अगर होगी तो तुम उधर हम इधर और बीच में झील। सारे संबंधों के बीच में क्या चाहिए? डिटैचमेंट। वो उधर हम इधर, एक ही घर में रह रहे परंतु वो उधर हम इधर और बीच में झील। एक ही घर में रह रहे, एक ही सेवा केंद्र में रह रहे, एक ही साथ भाई और बहन मिलकर सेवाएं कर रहे परंतु बीच में झील। वो उधर हम इधर, सेवा साथ में की, ओम शांति बाय बाय टाटा, बाद में तुम कहां हो, आई एम मिसिंग यू, ये मैसेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य की साधना, ऐसी अखंड तपस्या करनी है। ओम शांति।